लुका की मार्फत इंजील बाब 19। फिर ईसा यरीहो में दाखिल हुआ और उसमें से गुजरने लगा। उस शहर में एक अमीर आदमी बनाम जकई रहता था, जो टैक्स लेने वालों का अफसर था। वो जानना चाहता था कि ये ईसा कौन है, लेकिन पूरी कोशिश करने के बावजूद उसे देख न सका, क्योंकि ईसा के इर्द गिर्द बड़ा हुजूम था और जकई का कद छोटा था। इसलिए वो दौड़कर आगे निकला और उसे देखने के लिए अंजीर के दरख्त पर चढ़ गया, जो रास्ते में था। जब ईसा वहां पहुंचा तो उसने नजर उठाकर कहा, जकई, जल्दी से उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में ठहरना है। जकई फौरन उतर आया और खुशी से उसकी मेहमान नवाजी की। ये देखकर बाकी तमाम लोग बड़बड़ाने लगे। इसके घर में जाकर वो एक गुनहगार के मेहमान बन गए हैं। लेकिन जकई ने खुदावंद के सामने खड़े होकर कहा, खुदावंद, मैं अपने माल का आधा हिस्सा गरीबों को दे देता हूँ, और जिससे मैंने नाजायज तौर से कुछ लिया है उसे चार गुना वापस करता हूँ। ईसा ने उससे कहा, आज इस घराने को निजात मिल गई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम गुमशुदा को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। अब ईसा यरूशलम के करीब आ चुका था, इसलिए लोग अंदाजा लगाने लगे कि अल्लाह की बादशाही जाहिर होने वाली है। इसके पेश नजर ईसा ने अपनी ये बातें सुनने वालों को एक तमसील सुनाई। उसने कहा, एक नवाब किसी दूर दराज मुल्क को चला गया ताकि उसे बादशाह मुकर्रर किया जाए, फिर उसे वापस आना था। रवाना होने से पहले उसने अपने नौकरों में से 10 को बुलाकर उन्हें सोने का एक एक सिक्का दिया। साथ साथ उसने कहा, ये पैसे लेकर उस वक्त तक कारोबार में लगाओ जब तक मैं वापस ना आऊं। लेकिन उसकी रियाया उससे नफरत रखती थी, इसलिए उसने उसके पीछे वफद भेजकर इत्तला दी, हम नहीं चाहते कि ये आदमी हमारा बादशाह बने। तो भी उसे बादशाह मुकर्रर किया गया। इसके बाद जब वापस आया तो उसने उन नौकरों को बुलाया जिन्हें उसने पैसे दिए थे, ताकि मालूम करे कि उन्होंने ये पैसे कारोबार में लगाकर कितना इजाफा किया है। पहला नौकर आया, उसने कहा, जनाब, आपके एक सिक्के से 10 हो गए हैं। मालिक ने कहा, शाबाश, अच्छे नौकर, तू थोड़े में वफादार रहा, इसलिए अब तुझे 10 शहरों पर अख्तियार मिलेगा। फिर दूसरा नौकर आया, उसने कहा, जनाब, आपके एक सिक्के से 5 हो गए हैं। मालिक ने उससे कहा, तुझे 5 शहरों पर अख्तियार मिलेगा। फिर एक और नौकर आकर कहने लगा, जनाब, ये आपका सिक्का है, मैंने इसे कपड़े में लपेटकर महफूज रखा, क्योंकि मैं आपसे डरता था, इसलिए कि आप सख्त आदमी हैं, जो पैसे आपने नहीं लगाए उन्हें ले लेते हैं, और जो बीज आपने नहीं बोया उसकी फसल काटते हैं। मालिक ने कहा, शरीर नौकर, मैं तेरे अपने अल्फाज के मुताबिक तेरी अदालत करूंगा। जब तू जानता था कि मैं सख्त आदमी हूं, कि पैसे ले लेता हूं जो खुद नहीं लगाए, और वो फसल काटता हूं जिसका बीज नहीं बोया, तो फिर तूने मेरे पैसे बैंक में क्यों न जमा कराए? अगर तू ऐसा करता तो वापसी पर मुझे कम अज कम वो पैसे सूद समेत मिल जाते। ये कहकर वो हाजरीन से मुखातब हुआ, यह सिक्का इससे लेकर उस नौकर को दे दो जिसके पास 10 सिक्के हैं। उन्होंने एतराज किया, जनाब, इसके पास तो पहले ही 10 सिक्के हैं। उसने जवाब दिया, मैं तुम्हें बताता हूं कि हर शख्स जिसके पास कुछ है उसे और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो भी छीन लिया जाएगा जो उसके पास है। अब उन दुश्मनों को ले आओ जो नहीं चाहते थे कि मैं उनका बादशाह बनूं, उन्हें मेरे सामने फांसी दे दो। इन बातों के बाद ईसा दूसरों के आगे आगे यरूशलेम की तरफ बढ़ने लगा। जब वो बैतफगे और बैतनिया के करीब पहुंचा, जो जैतून के पहाड़ पर थे, तो उसने दो शागिर्दों को अपने आगे भेजकर कहा, सामने वाले गांव में जाओ, वहां तुम एक जवान गधा देखोगे, वो बंधा हुआ होगा और अब तक कोई भी उस पर सवार नहीं हुआ है, उसे खोल कर ले आओ। अगर कोई पूछे कि गधे को क्यों खोल रहे हो, तो उसे बता देना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। दोनों शागिर्द गए तो देखा कि सब कुछ वैसा ही है जैसा ईसा ने उन्हें बताया है। जब वो जवान गधे को खोलने लगे तो उसके मालिकों ने पूछा, तुम गधे को क्यों खोल रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, खुदावंद को इसकी जरूरत है। वो उसे ईसा के पास ले आए और अपने कपड़े गधे पर रखकर उसको उस पर सवार किया। जब वो चल पड़ा तो लोगों ने उसके आगे आगे रास्ते में अपने कपड़े बिछा दिए। चलते चलते वो उस जगह के करीब पहुंचा जहां रास्ता जैतून के पहाड़ पर से उतरने लगता है। इस पर शागिर्दों का पूरा हुजूम खुशी के मारे ऊंची आवाज से उन मौजजों के लिए अल्लाह की तमजीद करने लगा जो उन्होंने देखे थे। मुबारक है वो बादशाह जो रब के नाम से आता है, आसमान पर सलामती हो और बुलंदियों पर इज्जत व जलाल। कुछ फरीसी भीड़ में थे, उन्होंने ईसा से कहा, उस्ताद अपने शागिर्दों को समझाएं। उसने जवाब दिया, मैं तुम्हें बताता हूं, अगर ये चुप हो जाएं, तो पत्थर पुकार उठेंगे। जब वो यरूशलेम के करीब पहुंचा तो शहर को देखकर रो पड़ा और कहा, काश तू भी इस दिन जान लेती कि तेरी सलामती किस में है, लेकिन अब ये बात तेरी आंखों से छुपी हुई है, क्योंकि तुझ पर ऐसा वक्त आएगा कि तेरे दुश्मन तेरे इर्द गिर्द बंद बांध कर तेरा मुहासरा करेंगे और यूं तुझे चारों तरफ से घेर कर तंग करेंगे। वो तुझे तेरे बच्चों समेत जमीन पर पटकेंगे और तेरे अंदर एक भी पत्थर दूसरे पर नहीं छोड़ेंगे, और वजह यही होगी कि तूने वो वक्त नहीं पहचाना जब अल्लाह ने तेरी नजात के लिए तुझ पर नजर की। फिर ईसा बैतुल मुकद्दस में जाकर उन्हें निकालने लगा जो वहां कुर्बानियों के लिए दरकार चीजें बेच रहे थे। उसने कहा, कलाम मुकद्दस में लिखा है, मेरा घर दुआ का घर होगा, जबकि तुमने इसे डाकुओं के अड्डे में तब्दील कर दिया है। और वो रोजाना बैतुल मुकद्दस में तालीम देता रहा, लेकिन बैतुल मुकद्दस के रहनुमा इमाम, शरीयत के आलिम और अवामी रहनुमा उसे कत्ल करने के लिए कोशा रहे, अलबत्ता उन्हें कोई मौका न मिला, क्योंकि तमाम लोग ईसा की हर बात सुन सुनकर उससे लिपटते रहते थे।